हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से रिसेंटली भगवान वामन देव का आविर्भाव था। आपको याद है वामन देव? वामन देव कौन है? भगवान वामन देव का आविर्भाव भी वामन द्वादशी हुआ है पिछले एक दो हफ्ते पहले। तो मैं आज वामन देव के बारे में चर्चा करूंगा। श्रीमद् भागवतम में वामन देव की लीला का वर्णन है और उससे हम क्या सीख सकते हैं उस वामन लीला से, वो शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से या प्रभुपाद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ समय के लिए ध्यान से आप सुन सकते हैं इस संवाद को। तो श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण की महान देन है। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस जगत को छोड़ते हैं तो अपना जो स्वयं का रूप या अपना अपने से अभिन्न ऐसा स्वरूप वो पीछे छोड़ते हैं, जिसको श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। इसलिए भागवतम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवतम को समझना या भागवतम के प्रति रुचि विकसित करना, आसक्ति विकसित करना, भागवतम को सुनने में, उसका अध्ययन करने में, उसकी चर्चा करने में, तो शास्त्र कहते हैं वो कृष्ण के ही समान है, कृष्ण के समान ही उनसे आसक्ति है। तो इसलिए भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो श्रील प्रभुपाद ने सर्वप्रथम हमें दिया है। इवन भगवद गीता से पहले प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे या सबसे पहला गीत बुक लिखने के लिए शुरू किया तो श्रीमद् भागवतम था ग्रंथ था। उससे पहले तो प्रभुपाद मैगजीन आदि छापते थे, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे विदेशों में प्रचार करने के लिए जाना है तो मुझे अपने साथ कुछ ग्रंथ लेके जाना होगा। हाँ, क्योंकि प्रचार का माध्यम क्या है? ग्रंथ या आधार ग्रंथ है। यदि आधार नहीं हो तो कोई भी चीज हम बना देते हैं तो कालांतर में वो गिर सकती है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मेरी पुस्तकें ही इस आंदोलन का आधार है। तो भक्ति का जो पालन है वो हम करते हैं इन ग्रंथों के आधार पर। तो प्रभुपाद ये भागवतम को अनुवाद करते हैं प्रथम स्कंद को, जो तीन किताबें बनाते हैं और अपने साथ लेके जाते विदेशों में। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कि भागवतम साक्षात कौन है? कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद रोज हमें भागवतम देते हैं श्रवण करने के लिए अपने मंदिरों में। नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करो। रोज भागवत का संदेश व्यक्ति के कान में जाना चाहिए, बल्कि जिसने भी दीक्षा ली है उस व्यक्ति को एक भी दिन नहीं गवाना चाहिए भागवतम का स्पर्श किए बिना, भागवतम को पढ़े बिना, अन्यथा वो कहाँ का भक्त है। भागवतम साक्षात कृष्ण है तो कृष्ण की ओर उन्मुख होना है तो भागवतम का आश्रय लेना होगा, भागवतम को समझना होगा या सुनना होगा। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवतम जिसमें भगवान की बहुत सारे दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है। और भगवद गीता में हम जानते हैं भगवद गीता में क्या है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ तत्व दिए हैं और उनके उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं हमें? भागवतम में। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो। अभी इसका उदाहरण कोई ढूंढना है एग्जैक्ट उदाहरण तो वो भागवतम में बोला है। तो भागवतम में कौन है? इस श्लोक का सबसे बड़ा उदाहरण वृंदावन की गोपिका है। या फिर हजारों हजारों भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवतम में है। भगवद गीता क्या है? भगवान ने भगवत मीन्स भगवान, गीता मीन्स गीत। भगवान ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन के लिए एक गीत गाया, वो भगवद गीता है। भागवतम क्या है? भगवद गीता में संबंध ज्ञान का वर्णन अधिकतर है। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, आदि आदि। लेकिन भागवतम उससे आगे है कि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कहा वर्णन है भागवतम में। इसलिए अभिधेय ज्ञान भागवतम में है, प्रयोजन ज्ञान श्रीमद् भागवतम में है। तो ऐसा भागवतम कृष्ण से अभिन्न है जिसमें भगवान की असंख्य लीलाओं का वर्णन भक्तों के संग में है। इसलिए भागवत में भगवान और भक्त के बीच में जो प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान है उसको क्या कहते हैं, भागवतम कहते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों का जीवन है भागवतम में, जिसको श्रवण करने मात्र से, मनन करने मात्र से, चर्चा करने मात्र से कृष्ण हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति हमारा जो सेवा का भावना है वो बढ़ने लगता है, एक अत्यधिक स्ट्रॉन्ग प्रेरणा हमें मिलती है। तो हम इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से विचलित नहीं होते, लाभ आदि की कामना नहीं करते, हम बिल्कुल उस गंगा जैसे नदी समंदर की ओर बहती है उसी प्रकार से ही संसारिक भेद मतभेद आदि को हम ना सोचते हुए भागवत का इतना प्रभाव होता है कि इन सब चीजों से हम प्रभावित नहीं होते। हमारा मन कहाँ दौड़ता है, भगवान की ओर दौड़ता है। इसलिए भागवत वो बहुत पावरफुल वस्तु है। इसलिए सब लोग भागवत कथा करते हैं कि नहीं करते, लेकिन भागवत को आजकल क्या बनाया है, अपने उपजीविका का धंधा बना लिया है, धन अर्जन करने का सबसे सरल क्या बना लिया है, माध्यम बना लिया है। तो भागवतम तो कल्प वृक्ष है। कामधेनु गाय सुना है आपने, कामधेनु गाय वो है जिसके पास जाकर आप जो भी कामना करोगे तो तुरंत वो क्या करती है, देती है। उसी प्रकार से जितने शास्त्र हैं उनकी तुलना कामधेनु से की गई है। तो शास्त्रों को जिस भावना से आप अप्रोच करोगे ना, वही चीज आपको अपने जीवन में मिलेगी। तो लोग भागवतम को अप्रोच करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी उपजीविका कमाने के लिए, तो भागवत से वही मिलेगा। लेकिन भागवतम से क्या, भागवत क्या देने के लिए है, कृष्ण का प्रेम, भगवान का जो प्रेम है वो भागवतम देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पांच चीजें बोली थी, रूप गोस्वामी को कहा था कि इन पांचों को किसी को भी कोई भक्त पकड़ लेता है निश्चित रूप से उसके अंदर प्रेम की भावना कृष्ण के लिए जागृत होती है। हाँ, एक क्या है, भगवान के भक्तों का संग, दूसरा क्या है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, तीसरा क्या है, नाम संकीर्तन, चौथा क्या है, भगवान के विग्रह का श्रद्धा के साथ सेवा करना, और पांचवा क्या है, भगवान का जो धाम है उसमें जाके निवास करना। तो ये पांचों अपने आप में पावरफुल हैं। कोई किसी को भी पकड़ लेता है और तीव्रता से करता है तो उसको कृष्ण प्रेम निश्चित उसके हृदय में स्थापित हो जाएगा या जागृत हो जाएगा। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में महाराज बलि का चरित्र आता है और भागवतम में 10 अवतारों का वर्णन है, उसमें 8वें स्कंद में भगवान वामन देव का ये वर्णन आता है। हाँ, वामन अवतार का वर्णन आता है जिन्होंने किसके साथ छल किया था, बलि महाराज के साथ छल कपट से क्या किया, उनकी सारी चीजों को छीन लिया। हाँ, बलि महाराज ऐसे थे, महान महान आचार्य, समय तो बहुत कम है, घड़ी बहुत तेजी से घूम रही है। हाँ, तो मैं देखता हूँ बहुत फास्ट इस लीला का वर्णन करता हूँ, अन्यथा 2-3 घंटे चाहिए, इस लीला से काफी चीजें सीख सकते हैं। भागवतम की ये जो लीलाएं हैं ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है कि कोई बूढ़ी माता ग्रैंड मदर आके बच्चे को नींद नहीं आती तो रात को सुनाती रहती है, बच्चे एक राजा था उसके बारे में सुनाती हूँ, ऐसा नहीं है। भागवतम ये रत्नों की खान है और जो भक्त के पास जितनी योग्यता है उतना उस भागवत के गहराई में क्या कर सकता है, डूब सकता है। अभी मछुआरा जाल डालेगा तो ऊपर उसके हाथ में क्या आएगा, मछलियां, क्योंकि कुछ ऐसे गोताखोर होते हैं नीचे जाते हैं और सागर से क्या लाते हैं, रत्न लाते हैं। इसलिए सागर का एक नाम रत्नाकर है, रत्नाकर में जिसमें रत्नों की खान है। तो उसी प्रकार से भक्त का जीवन है, हमारा जीवन है भगवत भक्ति के कार्यों में और गहराई में जाना, गहराई में जाना। हाँ, तो वो ऊपर ऊपर का आध्यात्मिक जीवन हमें कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना नहीं देगा। एक न एक दिन भक्तों को गंभीरता से भक्तिमय जीवन में क्या करना होगा, गहराई से उतरना होगा और जानना होगा, समझना होगा, तभी कृष्ण प्रेम रूपी रत्न उसके हाथ में आएगा। नहीं तो बाकी बहुत सारी चीजें उसको मिलेगी, मान है, सम्मान है, भौतिक, ये सारी भौतिक चीजें हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम उसके लिए जीवन भर दुर्लभ होगा। भारी रूप से लेगा, और बड़ा भक्त है, इतना कार्य कर लिया, लेकिन कृष्ण प्रेम मृत्यु के समय उसके पास नहीं होगा। इसलिए भक्ति में सावधान, कॉन्शियस होकर कार्य करना और गहराई में जाना बहुत आवश्यक है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम के आठवें स्कंद में आता है ये वामन चरित्र या बलि महाराज के चरित्र का वर्णन, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मृत्यु के अंत तक हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए राधा रानी का एक नाम क्या है, विद्यार्थिनी। क्या नाम है, विद्यार्थिनी। विद्यार्थिनी मीन्स राधा रानी हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे नहीं कि अभी बहुत दिनों से क्लास में आ रहा, बहुत हो गया, अभी सब कुछ आ गया, नहीं। वो माया उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, भक्त के साथ। हाँ, तो विद्यार्थिनी मीन्स राधा रानी भी इतने टॉप मोस्ट डिवोटी है, वो भी सतत प्रतिदिन सीखती है नया नया। हाँ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे लिए नहीं है, हमें हमेशा हर भक्त से सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्यों राधा रानी सीखती है रोज प्रतिदिन, इसलिए सीखती है क्योंकि कृष्ण हर रोज एक जैसे नहीं है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है नव नवाय मानः, कृष्ण हमेशा नवे नए हैं, नूतन हैं, और कृष्ण हर रोज बढ़ रहे हैं, नए बन रहे हैं। तो इसलिए राधा रानी को भी नई चीजें सीखनी होती है उनकी सेवा के लिए। हाँ, तो इसलिए हमें भी सीखना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल क्या है, किसी की रुचि सीखने में नहीं है। हर एक को लगता है कि मैं सिखा देता हूँ। थोड़ा हम जब तक करते तो हमें भावना आती है कि अभी मैं सिखाने में दक्ष हो गया हूँ सब भक्तों में, लेकिन नहीं, हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। आजकल सीखना नहीं चाहता। एक बच्चा था, उसको उसके पिता उसको कान पकड़ के पिटाई कर रहे थे, इतना मार रहे थे उसको, बेचारा बच्चा चिल्ला रहा था। पड़ोसी आ गया, पड़ोसी ने पूछा, अरे बच्चे को क्यों मार रहे हो, कहते कल इसका रिजल्ट है ना, इसलिए मार रहा हूँ, धुलाई कर रहा उसकी। तो पड़ोसी कहता, अच्छा कल इसका रिजल्ट है लेकिन आज धुलाई क्यों, कहते मैं कल बाहर जाना है मुझे, क्योंकि उसको पता है ये रिजल्ट में क्या करने वाला है। इसलिए पिताजी घर नहीं होंगे उस दिन, दूसरे दिन तो सोचा आज ही पिटाई करके सुबह सुबह निकल जाऊंगा। इसका मतलब है कि हमारी सीखने के लिए कोई रुचि नहीं है इस युग में। बच्चा जन्म लेता, घर में हर कोई सिखाना चाहता है एक दूसरे को, पत्नी बच्चे माता पिता, लेकिन भक्ति में वही व्यक्ति सफल है जिसके हृदय में सीखने की भावना है, और वही व्यक्ति आगे उन्नति कर सकता है जिसके हृदय में सीखने की लालसा है। अन्यथा कभी भी हम भगवत भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए सीखना महत्वपूर्ण है। इसलिए राधा रानी का नाम क्या है, विद्यार्थिनी। तो वैसे ही भागवतम में ये बलि चरित्र का वर्णन आता है। परीक्षित महाराज जब सुना रहे थे, परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो बीच में उन्होंने बोला, अरे अरे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताओ ये जो भगवान है ये एक दरिद्र व्यक्ति के समान, गरीब व्यक्ति के भांति याचक बनकर बलि महाराज के पास क्यों गए, और उनको मोह मांगी वस्तु मिली फिर भी वो बलि महाराज को क्यों बांधा, उन्होंने क्यों बांधा और घसीट के लेके आए, उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों किया, परीक्षित महाराज जानना चाहते थे। परीक्षित जैसा उत्साही श्रोता इस संसार में मिलना असंभव है। इसलिए भागवतम का जन्म परीक्षित के लिए हुआ है। इसलिए वो व्यक्ति सफल है जो सुनने की लालसा रखता है। सुनने के माध्यम से हम सीखते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने ये सुना, परीक्षित महाराज ने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने ये सुना, तो सुखदेव गोस्वामी बोलने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे कि परीक्षित, अरे तुम तो बड़े उत्सुक हो, हाँ ये जो वर्णन है उसके बारे में सुनने के लिए, वामन देव का जो चरित्र है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने वामन देव का चरित्र सुनाया। तो हमारे पास आधा घंटा है, 6:30 बजे खत्म करना है ना, तो हम आधे घंटे में क्विकली आगे बढ़ते हैं। तो वामन देव का चरित्र वर्णन करना शुरू किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक बार देवतागण और आसुरों के बीच में महान संग्राम हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। उस युद्ध में बले महाराज की मृत्यु हो जाती है। बले महाराज की जब मृत्यु हो गई तो जो आसुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य आते हैं, बलि को जीवित करते हैं। उनके पास वो विशेष शक्ति थी जिसके द्वारा उनको जीवित करते हैं, और जब जीवित हो जाते हैं तो बलि महाराज कृतज्ञ हो जाते हैं। बलि कहते, शुक्राचार्य ने मुझे मेरा जीवन वापस दिया है, मुझे इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ऐसे बलि महाराज दीक्षा ग्रहण करते हैं शुक्राचार्य से, अपना गुरु उनको चुनते हैं और उनकी श्रद्धा के साथ सब प्रकार की सेवा करते हैं। शुक्राचार्य ने सोचा, अरे ये जो बलि आसुर हैं लेकिन मेरी सेवा में इतना तत्पर है। तो देखा कि बलि महाराज के पास ऐश्वर्य आदि नहीं है, तो बलि महाराज को एक विशेष यज्ञ करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया, और वो यज्ञ था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ मीन्स कि जिसके द्वारा विश्व को जीता जाए, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यज्ञ उन्होंने शुरू किया इनके अध्यक्षता में बलि ने। तो उस यज्ञ से सारी दिव्य वस्तुएं प्रकट हो गई। सबसे पहले 4 सुवर्ण वर्ण के घोड़े प्रकट हो गए, रथ प्रकट हो गया, कवच प्रकट हो गया, धनुष हो गया, तरकस हो गया, ऐसे बहुत सारे युद्ध के लिए लगने वाली वस्तुएं, दिव्य चीजें प्रकट हो गई। और ये जब प्राप्त किया उन्होंने बलि महाराज ने, तो बलि महाराज उन सब चीजों को धारण करते हैं। और प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज कौन है, बलि महाराज के ग्रैंडफादर हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र कौन है, बलि महाराज। तो ऐसे बलि महाराज तैयार हो गए थे। तो प्रहलाद महाराज ने बलि को एक पुष्प माला दी, न मुरझाने वाली, पावरफुल। वो बलि ने वो माला धारण की, और बलि के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने शंख दिया। तो ऐसी चीजों से लैस होकर बलि महाराज निकल पड़े स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए। और स्वर्ग की राजधानी पता है आपको कौन सी है? हमें इंडिया की राजधानी पता है, स्वर्ग की पता होनी चाहिए, अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। तो अमरावती में अपनी पत्नी शची के साथ इंद्र बड़े आनंद मग्न थे। उनको पता नहीं अभी ये छोड़ना पड़ेगा ऐश्वर्य। वैसे हमारा जीवन है, हम क्या हो जाते हैं, इंद्र के समान ऐसे निठल्ले हो जाते हैं भौतिक सुविधा प्राप्त करने के बाद, भूल जाते हैं एक दिन मुझे मेरे घर से बाहर होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन तैयार होना चाहिए। वो दिन कब आएगा किसी को पता नहीं है। तो बलि महाराज जब उस अमरावती के बाहर जाकर अपने सैनिकों के साथ खड़े हो गए, और इतना तेज निकल रहा था उनके शरीर से, और इतने बलवान थे, पावरफुल थे, बलि वैसे कृष्ण के मान भक्त हैं। जब वो गए उस अमरावती के बाहर, तो इंद्र ने देखा कि अरे ये व्यक्ति का इतना प्रभावशाली तेज कैसे है। इंद्र डर गया वो देखकर, और कहने लगे इसकी जो आंखें ऐसी लगती हैं मानो सारे त्रिभुवन को जला डालेगी ना, लपेट लेगी फायर। तो ये इंद्र डर के अपने गुरु के पास जाते हैं। सब समस्या आती है तो किसके पास पहुंचता व्यक्ति, गुरु। हाँ कोई बीमारी ने किसी को पकड़ लिया, सारे एलोपैथिक, ये पैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब कुछ होने के बाद हम किसी बाबा को ढूंढते हैं। बाबा ही चमत्कार कर सकता है, कुछ भस्म आदि दे सकता है, गुरु के पास जाते हैं। सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है, बाबा जी के पास, गुरु के पास। अल्टीमेटली व्यक्ति घूम घूम के जाता ही है, पहले नहीं जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो अपने बारे में और गुरु की शरण ग्रहण करो। तो वैसे ये गए इंद्र गुरु के पास और गुरु के पास जाकर कहा कि मुझे तो डर लग रहा है, ये कौन व्यक्ति है और इतना पावरफुल कैसे, इतना तेज, हाँ ये बलि को कैसे इतना तेजशाली है। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो कहते हैं ये तो बलि है, बलि महाराज आए हैं साक्षात वहां। और जब प्रश्न पूछा इन्होंने क्यों इतना इनका प्रभावशाली तेज है, तो बृहस्पति बोलते हैं, उत्तर देते हैं, क्यों पावरफुल है वो व्यक्ति। हाँ तो क्यों पावरफुल है, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने अपने गुरु की जो सेवा है श्रद्धा आदि के साथ की है, जिसके कारण उसके पास बल आ गया है। तो इस लीला से लेसन नंबर वन, अभी कई लेसन हम सीखेंगे, इसमें टाइम नहीं है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं इस पास्ट टाइम में वामन के अंतर। पहली शिक्षा ये है, मेन शिक्षाओं का वर्णन करूंगा। पहली शिक्षा ये है कि व्यक्ति आध्यात्मिक बल प्राप्त कर सकता है भक्तिमय जीवन में वो केवल गुरु और वैष्णव की सेवा करके, उनको प्रसन्न करके। तो इन्होंने कहा कि ये बृहस्पति वो बलि इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसने क्या किया है, भृगु वंश में आने वाले ब्राह्मणों को और अपने गुरु शुक्राचार्य को सेवा आदि से प्रसन्न किया है, इसलिए वो शक्ति संपन्न है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता काम नहीं आने वाले कि आपका नॉलेज कितना है, हाँ वो चर्चा करेंगे हम आगे, या आपके पास कितना सौंदर्य है, कितनी चीजों को आप मैनेज करते हो, कितना धन है, ब्यूटी है, ये सब काम नहीं आने वाला। हाँ नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुता श्रुते न, शास्त्र कहते कोई बहुत सारे प्रवचन देकर भी भगवान को जान नहीं सकता, अपने मेधया बुद्धि से भी नहीं जान सकता, ठीक है या बहुत सारे टीकाओं का अध्ययन करके भी भगवान को नहीं जान सकता। हाँ लेकिन एक है नायम आत्मा, वो कहते हैं कि बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते, बल चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वो कौन सा बल है, आध्यात्मिक बल, और वो आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु से, वैष्णव से। इसलिए ये पहली चीज इंद्र को बोलते हैं कि वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि क्यों, क्योंकि उसने अपने गुरु को सर्व किया है, इसलिए वो शक्ति संपन्न है। और उन्होंने कहा क्योंकि इंद्र को एक ही चीज की पड़ी थी, उसको लग रहा था उसको दो चीजें बहुत अटैचमेंट था, इंद्र अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, एक भागवत इंद्र सप्ताह हो सकता है, इतनी सारी इंद्र की चर्चा है। वास्तव में भागवत के पहले स्कंद में बोला है भगवान आते ही है केवल एक व्यक्ति के लिए, और वो कौन है, इंद्र। इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृणयन्ति युगे युगे, कि इंद्र के शत्रुओं का विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इसलिए इंद्र ने कितनी सारी चीजें की हैं, भगवान फिर भी उसको बचाते हैं, फिर भी सेवा में लगाते हैं। हाँ तो ऐसे इंद्र को दो चीजों से बड़ा आकर्षण है, एक तो अपना पद, इंद्र पद नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए हम भी होता है ना, ये मेरा पद नहीं छूटना चाहिए, इतने साल मैंने पद निभाया है। और दूसरा उसका टाइटल लगाया हुआ था, उनका एक टाइटल है इंद्र का जिसको कहते हैं शतक्रतु। शतक्रतु मीन्स 100 अश्वमेध यज्ञ जिस व्यक्ति ने किया है, और वही व्यक्ति इंद्र बनता है। तो ये डरता है कोई व्यक्ति यज्ञ करे 100 तो कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको खत्म करवा देगा, और इंद्र को जापना। तो ऐसे इंद्र इतने आसक्त हैं। तो लेकिन जब उन्होंने सोचा कि क्या कैसे हमारा ये कैसे खत्म हो सकता है इनका ये जो दोष है, तो वो बोलते हैं बाद में। लेकिन यहाँ बृहस्पति कहते हैं कि इनके पास बलि के पास अभी आध्यात्मिक शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद है जिसके कारण से वो पावरफुल है। इसलिए प्रभुपाद ने एक तात्पर्य में लिखा कि वास्तव में कृष्ण भावना प्राप्ति करने के लिए अपने निजी प्रयास से संभव नहीं है, गुरु और आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव की कृपा से ही, उनकी सेवा करके ही व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अर्जित कर सकता है। इसलिए आप देखो, जब कृष्ण और सुदामा जो जंगल में गए थे सांदीपनि मुनि के लिए लकड़ लाने के लिए, इतना घनघोर वर्षा आती थी तो रात को उधर ही रहे। उन्होंने सोचा नहीं अपने लिए, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा, किसकी सेवा के बारे में सोचा? सांदीपनि मुनि और कृष्ण ने, सुदामा और कृष्ण ने सांदीपनि मुनि की सेवा। दूसरे दिन जब सांदीपनि मुनि आए जंगल में, देखा ये दो बालक इतनी मेरी सेवा के लिए तत्पर है, उनका हृदय भर आया, आशीर्वाद दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञान है ये जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आप लोग नहीं भूलोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया उनको। तो भगवान के लिए क्या आशीर्वाद, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए कि कैसे सेवा की भावना होनी चाहिए अपने जीवन या लाइफ, और किसी भी प्रकार के कष्टों का वो सोचता नहीं है गुरु की सेवा के लिए। हाँ, तो ऐसे भगवान ने सेवा की तो उनको ये नॉलेज उन्होंने वो दिया, आशीर्वाद दिया। और वास्तव में भक्ति में केवल ज्ञान व्यक्ति के पास हो तो उसके विनाश का कारण है, या वो पतभ्रष्ट हो सकता है। लेकिन उस ज्ञान के साथ गुरु का आशीर्वाद हो तो उससे क्या निकलेगा बाहर, भक्ति। क्या निकलेगा? भक्ति। ये महत्वपूर्ण है। केवल ज्ञानी बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज के साथ आपके पास आध्यात्मिक गुरु की ब्लेसिंग चाहिए, और गुरु प्रसन्न है, उनकी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, तो वो ज्ञान भक्ति को जन्म देता है। अन्यथा वो ज्ञान केवल, ऐसे कितने बड़े बड़े लोग आए हैं इवन इस्कॉन में भी, बड़े बड़े ज्ञानी थे लेकिन वो क्या हो गए, पतभ्रष्ट हो गए, या फिर खत्म हो गया भक्ति की भावना कृष्ण के लिए, उनके हृदय में जागृत नहीं हुई। इसलिए केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद, और उससे क्या निकलेगा बाहर, भक्ति। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हम शास्त्र में देखते हैं, हाँ कई सारे उदाहरण हैं। तो आध्यात्मिक गुरु की जो कृपा इतनी बलशाली होती हो जाता है भक्त कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। एक बार तीन चूहे थे, हाँ, और आपस में बहुत चर्चा कर रहे थे, और एक दूसरे को बता रहे थे कि देखो मेरे अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना बल है। हाँ, जैसे हम भी आपस में मिलते हैं तो व्यक्ति अपने ही बारे में गुणगान करता है, अपने ही चीजों पता, देखो मुझ में कितना बड़ा सामर्थ्य है। तो वैसे ही एक चूहा बोलता है कि देखो मुझ में कितना कैपेसिटी है। वो मानव देखा ना, वो मानव लोग हमें मारने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उस मनुष्य ने मेरे लिए 250-500 ग्राम जो जहर है एक पकौड़े में डाल के रखा था, पूरा पकोड़ा खा लिया मैंने, लेकिन पूरा डाइजेस्ट कर लिया, कुछ मुझे हुआ नहीं, ऐसा वो बोल रहा था आज अपने सीना तान के। तो दूसरा चूहा कहता है अच्छा अभी मैं अपने बारे में सुनाता हूँ मेरा कितना कैपेसिटी है। दूसरा चूहा कहता है वो मानव है ना, उसने तो मुझे पकड़ने के लिए वो रैट ट्रैप पिंजरा रखा था, और मैं पिंजरे में फंस गया तो मैं अपने दांतों से ही उस पिंजरे के पूरा पाउडर बना दिया। देखो कितना कैपेसिटी है। अभी तीसरे को लगा मैं क्या कम हूं, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, माला मेरी जप कर कर की काली हो गई, हृदय सफेद नहीं हुआ। तो इसने कहा कि देखो मैं कितना पावरफुल। तीसरा चूहा कहते हैं देखो अभी जाता हूं, वो बिल्ली देख रहे हो ना सामने, बिल्ली के पास जाता हूं, उसकी छेड़खानी करके आता हूं वापस, उसको तंग करके आता हूं। वैसे भक्त होते हैं प्रभुपाद के, यहाँ कहते हैं कि क्यों वो चूहा ऐसा बोल रहा है तीसरा की बिल्ली को सीधा जाके तंग करके आता हूं, क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रकार से बल है। वैसे ही शास्त्र तुलना करते हैं बिल्ली की, माया की तुलना बिल्ली से करते हैं, और जो चूहा है वो जीवात्मा है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद होना तो वो आध्यात्मिक बल से माया रूपी बिल्ली को जो छोटा सा भक्त जाके चैलेंज करके आता है। जैसे प्रभुपाद के शिष्य थे, एक एक भक्त को प्रभुपाद ने कहा जाओ रशिया, जाओ चाइना, और वहां जाना मीन्स क्या, माया को क्या करना, चुनौती देके आना। एक एक भक्त गया प्रभुपाद का शिष्य, और जाके एक एक देश में मंदिर बनाए, प्रचार करके आ गया वापस सेफ। इससे हम सीखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद और उनकी सेवा से एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी बहुत अधिक क्या आ जाता है, बल, उससे वो बड़े बड़े कार्य कर सकता है। तो ये पहला लेसन है इस पास टाइम का, इस लीला का, कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बल अर्जित करना है भगवत भक्ति में, तो उसको गुरु और वैष्णवों की श्रद्धा के साथ क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उससे क्या होगा, भौतिक रूप से हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं हो, लेकिन उनकी कृपा से इतनी योग्यता आ जाती है, आप खुद हैरान होते कि अरे मुझसे इतने बड़े बड़े कार्य कैसे हो गए हैं, कैसे हो रहे हैं, कैसे मैं कर पा रहा हूं। तो जब उनको प्रसन्न करते, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, और अगली लाइन क्या है, यश अप्रसादात, वहां प्रसाद नहीं है, वहां क्या है, अप्रसाद है। दोनों बार आप प्रसाद प्रसाद बोलते हैं क्योंकि प्रसाद से इतना लगाव है। हाँ, तो ऐसे कुछ भक्त अपने बच्चे का नाम प्रसाद ही रखते हैं, कुछ जो माताएं हैं, है ना, क्योंकि प्रसाद से इतना प्रेम है, तो बच्चे का नाम भी प्रसाद हो तो अच्छा है। तो वैसे ही ये पहली चीज, तो फिर उन्होंने कुछ है कि नहीं, कैसे इससे हम मुक्त होंगे, तो इंद्र कहते हैं कुछ उपाय है। कहते हैं, वो कहते हैं कि काल बहुत सामर्थ्यवान है, समय सबको क्या करता है, ठीक करता है, करता है कि नहीं करता, बड़े बड़े दिग्गज आ गए, समय के साथ खत्म हो गए। तो बृहस्पति ने कहा, ये जो आसुरगण है अभी समय उनका साथ दे रहा है, कभी कभी हम बोलते हैं ना जीवन में, आजकल समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक नहीं है, कुछ तो दिक्कत है। तो समय काल, काल कौन है, साक्षात कृष्ण है, भगवान कहते रहे गीता में, मैं काल हूं, कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, अर्जुन में काल हो, और ये देख रहे हैं इन सबको, इनका विनाश करने के लिए मैं इस युद्ध भूमि में आ गया हूँ, लोक क्षय कृत, लोगों का क्षय करने के लिए आया हूँ। तो वैसे ही जब उन्होंने पूछा, बृहस्पति कहते काल अभी इनका समय इनके साथ है, बहुत पावरफुल है, हे देवताओं अभी घर छोड़ के भाग जाओ, और छुप जाओ नया रूप लेके कहां किसी कोने में, देवतागण सारे छुप जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन एक चीज होगी, इंद्र ने जब पूछा कि कैसे ये लोग पराजित हो जाएंगे, तो इंद्र बृहस्पति कहते हैं, तेषामेव अपमानेन सानुबंधो विनक्षति, कि आगे चलकर क्या होगा, ये बलि इतना पावरफुल है ना, ये अपने ही गुरु या भक्तों का या वैष्णवों के प्रति अपराध करेगा, जिसके द्वारा इसका विनष्ट होना निश्चित है, सारा जो ऐश्वर्य है, पद आदि है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेषामेव अपमानेन, ये क्या करेगा, अपने मन वाणी आचरण से उन ब्राह्मणों का या वैष्णवों का, भक्तों का, गुरु का क्या करेगा, अपमान करेगा, अपराध की भावना। तो लेसन नंबर टू, हाँ मैं भी बहुत अच्छा भक्त हो सकते हैं, बहुत दिग्गज जाने माने हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ विनष्ट हो जाएगा भक्तिमय जीवन, जब हम क्या करेंगे, शरीर मन वाणी से वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति अनादर की भावना या फिर अपराध का भाव रखेंगे, अपमान आदि करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी आध्यात्मिक हमने शक्ति अर्जित की है खत्म हो जाएगी, फिर एक माला जप करना हमारे लिए बारी हो जाएगा, भागवतम तो पूरे 5 साल के बाद एक पेज पलटी होगा उसका, हाँ तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इससे सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। जैसे देखते हैं कर्ण, कर्ण को नॉलेज प्राप्त करना था, विद्या, तो परशुराम के पास जाते हैं, और परशुराम ने व्रत लिया था कि मैं तो केवल ब्राह्मणों को सिखाऊंगा, कर्ण ने कहा झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो विद्या आदि सब अर्जन किया, एक दिन परशुराम उनके गोद में सो रहे थे, हाँ तो एक कहते बिच्छू या फिर कुछ ग्रंथों में भ्रमर आके उनके आर पार हो जाता है जांघ के, और ब्लड खून ही खून बहता है, और परशुराम वहां सो रहे थे, उनके वस्त्र भी भीग जाते, तो उठते अरे देखते अरे क्या है कर्ण, तो वो देखते कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है, ब्राह्मण को प्रसाद समय में नहीं मिला तो वो चिल्लाने लगता है, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को खुश करना है, अपना बनाना है तो उसको भोजन और दक्षिणा, वो आपके लिए पूरा मंत्रों का उच्चारण करेगा, आपका हो जाएगा, सारे राशि सब कुछ चेंज करेगा, किसके लिए, आपके लिए। तो इसलिए फिर तो ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्षत्रिय हो तो पता चला कि हाँ एक क्षत्रिय है। और फिर परशुराम ने उनको श्राप दिया, कहा कि जब समय आएगा ना, जो उचित समय जब चाहिए होगा ये नॉलेज विद्या, उस समय तुम बोल जाओगे ये है अपराध। हाँ, तो उसी प्रकार से यदि हम ऐसी अनादर अपराध की भावना वैष्णव के प्रति गुरु के प्रति रखते हैं तो मृत्यु के समय एक विद्या भूल जाएंगे, कौन सी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जोर से बोलिए, ऐसे लग रहा है कि आपको जबरदस्ती लेके आए हैं, मन ही नहीं था आ जाने का, ऐसी स्थिति है, कैसे होगा हमारा। तो ऐसे कहते हैं कि फिर मृत्यु के समय भगवत स्मरण नहीं होगा उस व्यक्ति को, हाँ चला जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब ये अपराध करेंगे तो ये वस्तु उनके साथ होगी, वो विनष्ट हो जाएगा सब कुछ बलि आदि का। तो इस प्रकार से देवतागण सारे अपने ऐश्वर्य को त्यागते हैं, भाग जाते हैं, अपना इंद्र स्वर्ग खाली कर देते हैं, बहुत बुरे दिन उनके चलने लगते हैं, और बलि महाराज फिर सारे त्रिभुवन के राजा बन जाते हैं। और जब राजा बन जाते हैं तो फिर देवताओं की माता कौन है, अदिति, और दैत्यों की माता कौन है, दीपी। तो किस कौन से माँ को अच्छा लगता है जब बच्चों को घर खाली पड़ना पड़ रहा है, रोड पे निकल आए हैं। हाँ, तो आदिति को बहुत दुख हो गया कि मेरे सारे पुत्र गण आदि बिल्कुल याचक भिखारी की तरह बाहर गए स्वर्ग से और छुपके रह रहे हैं, उनके पास ना वस्त्र आदि ठीक ठाक है। तो आदिति को बहुत दुख हो गया, और आदिति किसकी पत्नी है, कश्यप की। दीति भी किसकी पत्नी है, कश्यप मुनि की। तो अभी आदिति बहुत दुखी हो गई, और कश्यप मुनि तपस्या करके अब उनके आश्रम में आ रहे थे, देखा अरे आदिति तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि मन कुछ अशांत है, दुखी दुखी सी लग रही हो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं अपने पुत्रों का जो ऐश्वर्य आदि है वो वापस दे सकती हूँ। तो फिर कश्यप मुनि ने बड़ा प्रवचन दिया उनको, पूरा बोला कि देखो कैसी माया का प्रभाव है, कितने बड़े भक्त हूं मैं, उसकी पत्नी होकर भी तुम्हारी इस संसार में बच्चों के प्रति इसी पुत्र आदि बच्चों के प्रति बहुत अधिक आसक्ति है जिसके कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, ऐसा बहुत कुछ बोला उनको, पूरा एक अध्याय है, इतना सब कुछ बोला। और अभी लगा कि इतना सुनाए तो अभी ठीक हो जाएगी है, लेकिन सब सुनने के बाद जैसे कहते हैं रामायण सुनिए और पूछा बाद में, क्या पूछा, सीता जी राम की कौन है, क्या लगती है, तो वैसे इसके साथ हो गया, इसने सब उद्देश्य सुने, पूरा आसक्ति के बारे में, संसार दुखालय से अश्वत्थ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और पूरा सब कुछ सुना, हा हा किया, और बाद में कहते नहीं मुझे तो वही चाहिए मेरे बच्चों का हित। तो फिर वो उपदेश देते हैं, फिर उसको एक व्रत देते हैं। तो लेसन नंबर 2-3, पहला क्या था, बल कैसे प्राप्त करना, दूसरा क्या था, निर्बल कैसे हो जाओगे, तीसरा क्या है, गुरु शिष्य की योग्यता के अनुसार क्या देते हैं, उसको उपदेश देते हैं, तीसरा ये कि देखा कि ये तो आसक्ति से बाहर ही नहीं आएगी, ये तो पूरी अंधी हो गई अपने बच्चों के प्रेम से, ये फंसी हुई है, तो इसलिए उसको कहते ठीक है तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। और वो व्रत देते हैं पुंसावन, हाँ जो व्रत है, जो व्रत करती है दूध पीकर 12 दिन लगभग 15 दिन और भगवान विष्णु की आराधना करके आ देती, और जिस व्रत के प्रभाव से स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जब उसके सामने प्रकट होते तो आदिति दंडवत मारती है, कांपने लगती है, भगवान से क्या बोलूं, तो भगवान कहते हैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। और फिर आगे चलकर भगवान कौन से रूप में प्रकट होते हैं आदित्य के गर्भ से, वामन देव, कौन से देव, वामन देव। तो वामन देव के रूप में आगे चलकर भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भगवान सबसे पहले प्रकट होते चतुर्भुज रूप में, जैसे वसुदेव देव के लिए कारागृह में बालक रूप में नहीं प्रकट हुए थे, पहले कैसे हुए थे? चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म मकर कुंडल पीतांबर आदि धारण किया, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। और फिर उन्हीं के सामने छोटे हो गए, बटू एक ब्रह्मचारी बालक छोटे से इस रूप में प्रकट हो गए, द्वितीय और आदित्य और कश्यप आदि के सामने। तो वह वर्णन आता है भागवत में, तो पूरा आठवां स्कंद आधा बुक तो इसी के लिए है, इस लीला के लिए। तो जब भगवान ऐसे प्रकट हो गए तो उनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें प्रदान की, क्योंकि अलग अलग संस्कार होने थे। तो भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में थे, छोटे से बालक थे, बटू ब्राह्मण के रूप में थे। तो फिर सबसे पहले सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र का उच्चारण सिखाया, फिर कश्यप मुनि ने कई सारी चीजें दी, फिर कुबेर ने उनको क्या दिया? भिक्षा मांगने के लिए पात्र दिया। ब्रह्मचारी का कर्तव्य क्या है? भिक्षा मांगना, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो ऐसे भिक्षा के लिए पात्र दिया, और चंद्रमा ने उनके लिए ब्रह्म दंड दिया, डंडा लेके चलता है जो ब्रह्मचारी है। तो ऐसे वस्तुएं दी, तो सबसे पहले भिक्षा का पात्र था, तो भिक्षा कौन देगा? तो भगवती देवी पार्वती ने उनको क्या दिया? सबसे पहले भिक्षा दी, अभी वो निकल पड़े। और वास्तव में वामनदेव आए थे भीख मांगने के लिए, लेकिन भिक्षा मांगने के लिए। तो ऐसे भगवान सब कुछ उनको प्राप्त हो गया, मृग चर्म उन्होंने धारण किया, तो जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, छोटे से बालक अभी अभी जन्म लिए, हाँ ऐसे नहीं कि बच्चे रोया था और फिर उसके बाद बड़ा हो गए वामन तब तक आदि थी परेशान थी, हाँ नहीं, बड़े थे सीधा एक छोटे बच्चे के रूप में बन गए। तो ऐसे बालक चलने लगा, कहाँ चलने लगा? बलि महाराज की यज्ञशाला तक। तो बलि महाराज नर्मदा तट पर, उत्तरी तट पर एक स्थान है जहां वो यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ, और कितने करने थे उनको? 100, क्योंकि इंद्र का पद अब उनके पास था, लेकिन जो अलग देवता है उनको अपना लीडर के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे थे, वो सोच रहे थे 100 यज्ञ करेंगे तो हम स्वीकार करेंगे। तो ऐसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो तत्पर हो गए, और उस समय उनके जो प्रमुख थे शुक्राचार्य के गाइडेंस में वो यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान यहाँ से निकले और उस यज्ञ जहां हो रहा था वहां तक चल रहे थे, और भगवान सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे? बलि महाराज के बारे में, अच्छा मैं जाऊंगा उसके पास और मांगना है मुझे। तो भगवान जब चल रहे थे तो भगवान ने छोटे से बालक तो देखा, अरे यहाँ तो लक्ष्मी का निवास है, राइट साइड में भगवान के कौन रहते हैं? सदैव लक्ष्मी, श्री वत्स चिन्ह होता है और कौस्तुभ मणि भगवान धारण करते हैं, तो राइट साइड में लक्ष्मी निवास करती है। और जब आप देखा पुजारीगण चद्दर डालते हैं, कैसे डालते हैं? यहाँ से यहाँ तक डालते ना, ऐसे ये साइड खुला रखते हैं, देखा है या ना? देखा आपने मंदिर में कभी? नहीं देखा? तो ये साइड खुली रहती है पुजारी इसका। तो वैसे ही ये बटो ब्राह्मण भगवान वामन ने ऐसे मृग चर्म का ऐसे वो डाला था चद्दर, एक प्रकार से बांधा था, और यहाँ लक्ष्मी थी। भगवान ने सोचा मैं तो मांगने जा रहा हूँ बलि के पास, और बलि का छीन ही नहीं सकता मैं, यदि लक्ष्मी की दृष्टि जिस पर है उसका ऐश्वर्य कम हो सकता है क्या? नहीं, तो कहते लक्ष्मी को ढकना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं, अपना यहाँ का उत्तरिया निकाल कर ऐसा डालते हैं, इधर का वह खोल देते हैं। इधर का क्यों ढकते? क्योंकि जनेऊ यहाँ होता है ब्राह्मण का, पुजारी का, ढक देते हैं। तो ऐसे जब यहाँ डालने लगे भगवान, तो ये लक्ष्मी कहती सोचती, अच्छा एडजस्टमेंट कौन से बंदे के लिए कर रहा है, चल रहा है भगवान यार, एडजस्टमेंट करते हुए चल रहे आगे, किसके लिए एडजस्टमेंट हो रही है? तो वो समझ गए किसके लिए हो रही है, बलि के लिए। कहते फिर लक्ष्मी के हृदय में ना ये भावना आ गई कि भगवान जिसके लिए इतना एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसको मुझे देखना ही देखना है ठीक से। तो भगवान जब चल चल गए, चलते 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 पहुंचे, छोटे से बालक है, तेज निकल रहा था, पावरफुल थे भगवान, एक एक पद जब डाल रहे थे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी धस रहे थे नीचे। जब ऐसे पहुंचे उस यज्ञशाला के पास तो सारे ब्राह्मण आज खड़े हो गए, और शुक्राचार्य बलि महाराज सब खड़े होकर छोटे से बालक को देख रहे हैं, ब्रह्म तेज से भरा हुआ देखा तो सब लोग खड़े होकर उनके पास आते हैं। वो सोचते ऐसे बालक हमने कभी भी नहीं देखा, इतना तेज सामर्थ्य शौर्य बल आदि किसमें। तो वो आकर भगवान वहां खड़े होते हैं वामन भटु, तो ये आते बलि और उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं और तुरंत चरण धोने के लिए पात्र लाते हैं, जल लाते हैं। और बलि कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया। शास्त्र कहते हैं गृहस्थ का कर्तव्य है किस प्रकार से आतिथ्य आदि होना चाहिए, तो इतना सम्मान आदि देते हैं और फिर उनके चरण आदि धोते हैं। बलि कहते हैं मैं तो धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, आप जैसे महान ब्राह्मण का यहाँ आगमन हो गया। उनको नहीं पता ये ब्राह्मण आदि सब कुछ लेने वाला है, थोड़ी देर इंतजार करो ये असली रूप दिखाएगा। हाँ तो ऐसे सब हो रहा था तो इन्होंने कहा, बलि ने कहा कि आपको देखने से लगता है, बलि महाराज बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने उनके चेहरे को देखने मात्र से बताया वामन देव के, मुझे लगता है आपके चेहरे से देखने से लगता है कि आप कुछ मांगने आए हो यहाँ। जन्माष्टमी का समय आता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का समय आता है, किसी के घर जाते तो पता चलता है ये सब मांगने के लिए आए हैं लोग हमारे यहाँ। तो वैसे ही इन्होंने कहा आप तो कुछ मांगना चाहते हो शायद, और मैं तो महान राजा हूँ, त्रिभुवन का राज्य है, आपको सोना चाहिए तो मांगो, गाय चाहिए या कुछ भोजन करने की इच्छा है स्वादिष्ट, या फिर पेय चाहिए, ऐसे बहुत सारे लिस्ट दिए भागवतम में। मुझे लगता है आप ब्रह्मचारी हो, आपको सुंदर करने विवाह के लिए चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, या फिर आपको वस्त्र अच्छे पहनने की इच्छा है तो वो भी देता हूँ, बताओ बताओ क्या चाहिए। तो ये कहते हैं मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं मुझे क्या चाहिए, तीन पग भूमि चाहिए। तो वहां वो कहते हैं वामन देव कहते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति वामन देव फिर उनको बोलने लगते हैं कि मुझे तीन पग ही भूमि चाहिए। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार की जब ब्राह्मण अपने गुणों को खो देता है या पाप में प्रवृत्त हो जाता है, यदि वो अपने पास जरूरत से ज्यादा चीजें रखता है, तो वहां लेसन नंबर 4 कि वहां वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को सदैव क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जब व्यक्ति एक ब्राह्मण आवश्यकता से अधिक वस्तुएं धन सब कुछ प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से समझो कि थोड़े ही दिनों में उसका आध्यात्मिक जीवन से पतन होने वाला है, या फिर वो आध्यात्मिक जो तेज है वो खो देता है, निर्बल हो जाता है। तो वहां भगवान सिखाते, भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति का इंद्रियों पर वश नहीं है उस व्यक्ति को इंद्रियों के उपभोग की सारी वस्तुएं जगत की मिल जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वहां कहते हैं कि भक्ति में लगे हुए व्यक्ति को सदैव संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट सततम योगी। हाँ, संतुष्ट होंगे तो भगवत भक्ति में अग्रसर होंगे, अन्यथा हम संतुष्टि नहीं होगी जीवन में तो सदैव भौतिक चीजों की लालसा बनी रहेगी, तो भगवान की लालसा कभी हृदय में नहीं आएगी। इसलिए भगवान कहते वहां कि एक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, और यदि संतुष्ट नहीं है कोई ब्राह्मण तो निश्चित रूप से उसका तेज खत्म हो जाएगा और आध्यात्मिक जीवन से हाथ धोकर वो जरूर कुछ ना कुछ पाप करेगा। हम देखते हम संतुष्ट नहीं होते अपने जीवन में तो व्यक्ति धन के लिए पोजीशन के लिए कुछ ना कुछ पाप कर्म करता है, क्यों, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण आध्यात्मिक जीवन उसके हाथ से छूटता है, उसको पता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, एक शिक्षा है। तो फिर वामन देव कहते हैं, भगवान वामन देव उनको ये सब बोल रहे थे तो बलि महाराज, बल्कि जब ये मांग रहे थे ना भगवान वामन, तो लक्ष्मी देवी ने क्या किया, ये जो जो चद्दर ऐसे डाला था मृग चर्म वहां से नीचे किया, पहले देखा ये किससे बात कर रहे हैं, आगे देखा था कौन थे, बलि महाराज। और ये इसलिए आचार्य गण कहते इसी एक दृष्टि लक्ष्मी देवी की थी जिसके कारण आगे चलकर उन्होंने जो उनसे छीना गया था उससे श्रेष्ठ चीज उन्हें प्राप्त हुई। तो जब इन्होंने मांगा तो मांगने के लिए तत्पर मांगा तो इन्होंने ये हंसने लगे, बोले महाराज ये क्या क्या मांग रहे हो, मेरा तो अपमान है एक प्रकार से, मैं तो कितनी चीजें दे सकता हूँ, तीन पर भूमि, वो भी ये छोटा सा बच्चा है, सो हम जब सोते हैं तो उतना ही लगता है हमें, कितना लगता है तीन पर भूमि में ही सोते, लेकिन आकांक्षा कितनी है, हमें अपने वन रूम किचन का कितना घमंड है, जिसके पास एक रूम पांच रूम किचन है उसको आधी घमंड। तो यहाँ आप देखो बलि महाराज के पास कितने रूम किचन थे, अमा उनके पास त्रिभुवन का राज्य था, लेकिन वो सारा वो समर्पित करने के लिए तत्पर हो गए, किसके चरणों में, भगवान के चरणों में। वहां बलि महाराज ने देने के लिए तैयार हो गए, हाँ तो वामनदेव कहते देखो जो सत्यवादी होते हैं वो कभी अपने वचन से मुकराते नहीं है, मतलब वो नहीं कि अभी मैंने बोला बाद में पता चला अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है अभी नहीं दूंगा मैं दान नहीं दूंगा, कई बार होता है ना कहते पास्तो भगवत गीता हाँ उसको पहले बताते हैं कि फ्री में बांटनी है, बाद में पता चलता है इतना पैसे देना है गीता का, हम आप गीता बांट देंगे, हम आप बोले कितना बांटेंगे, हम 500,000 जो आप कहे बांटते हैं, लेकिन जब चेक पैसे की बात होती है वैसे हाथ नीचे हो जाते हैं, पहले हाथ ऊपर। तो ऐसी स्थिति उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं भगवान ने सोचा ये मुकर बोलेगा नहीं बाद में कि कितने पग भूमि और कितना बड़ा पग है कि, तो वैसे इन्होंने जब मांगा तो भगवान ने ये सब बोला। और फिर जब दान देते हैं तो वैदिक सभ्यता में जल हाँ देते हैं उस याचक के हाथ में और तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उससे पूर्णता होती है दान की। तो ये जल का पात्र उठाया और भगवान वामनदेव के हाथ में डाले रहे थे जल, उस समय एक व्यक्ति दुखी था, कौन थे, शुक्राचार्य। अब ये शुक्राचार्य ने सोचा मेरा डिसाइपल जिसको इतना भक्ति में लगा दिया है इतना सेवा में, अभी ये निर्धन हो जाएगा तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, गुरु को चिंता किसकी है, शिष्य के नहीं, कलियुगा में शास्त्र में एक श्लोक आता है इस संसार में रेयरली गुरु ऐसे मिलेंगे जो शिष्य संताप हारता, कि शिष्य का संताप हारने की इच्छा रखने वाले बहुत कम ना के बराबर गुरु मिलेंगे, सारे जो गुरु है उनको चिंता अपनी है, अपना बिजनेस चलाना है, अपना उदर निर्वाह चलाना है, अपना आश्रम चलाना है, उसकी चिंता है, शिष्य का भगवत धाम भेजने की चिंता इस संसार में गुरु को नहीं है। तो शुक्राचार्य को लगा कि कैसे होगा, मेरा पत्नी बच्चे सब ताम धाम इतना है, इतना मंथली खर्चा है, ये शिष्य निर्धन हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। कहते बलि ये तो विष्णु है और इसने जन्म लिया है कश्यप और आदित्य के गर्भ से और देवताओं का हित करने के लिए ये यहाँ पहुंचा है, ये सब कुछ छीन लेगा तेरा, इसको दान मत दो। हाँ ऐसे जो बोला, शास्त्र कहते एक ही समय ऐसा है जो गुरु को आप मना कर सकते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, जब वो कृष्ण की सेवा से हमें क्या करता है, रोकता है, उस समय अवज्ञा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शुक्राचार्य जल पात्र उठाया भगवान वामन के उसमें देना चाह रहे थे, बल्कि बलि महाराज हृदय से आनंदित हो रहे थे कि इतना बड़ा सेवा का मौका मुझे मिला है, भगवान के ऐसी सेवा में कर पाओ अपने जीवन में, हम बाहरी रूप से सबको दुख लग रहा था। तो अब ये जल पात्र उठाया और पानी ऐसा डाल रहे थे, जो छेद था उसमें से पानी गिरने वाला था, तो उसमें शुक्राचार्य अपने सिद्धि के द्वारा जाकर छोटे हो गए और छेद में जाकर बैठ गए, ऐसे बैठ गए, पानी की एक बूंद नीचे नहीं आ रही थी। भगवान वामन देव ने कुशाग्रास दिया, टोकदार नोकदार ऐसा नुकीला और डाला उस छेद से सीधा शुक्राचार्य की कहां गया, आंख में, आंख फूट गई, आज भी एक ही आंख है उनको, एक आंख वाले शुक्राचार्य है अभी जो है। तो ऐसे हाँ वो फिर निकल आते हैं और जल डालते हैं और फिर भगवान को बिठाते हैं, बलि महाराज की जो पत्नी है विंध्यावली जल का बड़ा पात्र लाती है, चरण धोती है और बहुत कुछ हो रहा था, और ये सब कौन देख रहा था, उनकी जो पुत्री है रत्नमाला, बलि महाराज वो देख रहे थे, हाँ ये बालक कितना सौंदर्यवान है, कितना अच्छा मधुर मधुर बोलता है, मुझे लगता है मेरा पुत्र कोई हो तो ऐसे होना चाहिए जिसको मैं दूध पिला सकूं, हाँ दूध पिला सकूं। लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद उसको पता चला दूध नहीं, इसको क्या देना चाहिए, जहर देना चाहिए। वही रत्नमाला कृष्ण लीला में पोतना बनकर आती है। तो ये सब सब हो रहा था, आपको देखा हाल, वो रत्नमाला देख रहे थे। तो उस समय भगवान ने जैसे ही इन दोनों ने उनकी पूजन किया, पति पत्नी ने, भगवान छोटे से बट्टू ब्राह्मण अभी विशाल हो गए, इतने बड़े हो गए कि वो बादल तक उड़ता वो सर लगा। और तब भगवान ने पूछा, बलि अभी पग डालो एक छोटा सा, बलि अभी डरे नहीं, बलि ने मना नहीं किया, बलि तो अभी भी अपना सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, आनंदित थे क्योंकि सेवा करने का मौका मिला था। इस संसार में भगवत सेवा कितने लोगों को नसीब है, उन्होंने कहा हाँ तो भगवान तत्पर हो जाते हैं और अपना एक पग डालते तो सारे नीचे की जो सप्त लोक है पृथ्वी इनको ले लेते हैं, दूसरे पग से पूरा स्वर्ग लोक महालोक और पूरा ब्रह्मांड को, भगवान वामन देव का पाव का नाखून ब्रह्मांड को टच करता है तो उससे ब्रह्मांड फटता है और उसमें छेद बनता है, फिर ब्रह्मांड सारे कारण सागर में तैर रहे हैं तो उसका सागर का जल उसमें आता है, इस ब्रह्मांड में प्रवेश करता है और वही क्या बनता है, गंगा। और उसी को सबसे पहले ब्रह्मा अपने कमंडल धारण करते हैं, फिर बाद में हम सुनते भगीरथ और वो इस संसार में शिव जी के द्वारा गंगा त्रिभुवन पृथ्वी को पवित्र करने के लिए आती है। तो जब ये हुआ तो दो पग तो ले लिया, अभी दो पग में जितनी चीजें थी उनकी सब कुछ ले लिया। तो अभी फिर बोला, बलि तीसरा पग कहाँ डालो, तो बलि समझ गए भगवान कहते अभी भी एक चीज बाकी है, कहते कि ये जो त्रिभुवन का जो भी वस्तुएं हैं सामग्री आदि धन संपदा ऐश्वर्य ये मेरा था, दो चीजें हमारे पास हैं जिसको दो शब्द में शास्त्र कहते हैं अहम और मम, क्या है अहम और मम या मैं और मेरा। तो इन्होंने अभी मेरा जिसको हम बोलते हैं वो सब कुछ भगवान ने ले लिया, छीन लिया, मेरा ये मेरा राज्य मेरा धन मेरा अट्टालिका मेरा सब कुछ लिया मेरा मेरा। तो भगवान को कहते भगवान ये मम तो आपने सब कुछ लिया लेकिन एक चीज अभी भी मेरे पास है और वो क्या है, अहम। तो इस संसार में इस भगवान से दूर रखने वाली जो सबसे बड़ी चीज है ना वो अहंकार है। कौन सी कार, अहम वाली कार, ये कोई और ब्रांड नहीं है। तो ये अहम की जो कार है ये हमारे विनाश का कारण है। तो उन्होंने कहा क्योंकि व्यक्ति को अपना अहंकार बहुत प्रिय है, हम जब बीमार हो जाते हैं तो मेरा धन उसको हम सारा खर्च करने के लिए तैयार है क्योंकि इंपॉर्टेंट कौन है, अहम मैं, तो मेरा सब कुछ बल हम लगा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मेरा ये जो अहम मैं हूं और मैं की जो भावना है क्योंकि इस संसार में भगवान से हम अलग भी हुए हैं तो केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए, मैं शरणागत हो ये नहीं, मैं कृष्ण का दास हूं ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान से अलग है, मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ योग्यता है। भक्ति में आने के बाद भी हमारे पास छोटी मोटी योग्यता आती है तो मैं के चक्कर में ही वृद्ध हो जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, विनम्रता का भाव हम नहीं लाते अपने हृदय में। तो ऐसे मैं उन्होंने कहा अहम मेरे पास है और ये अहम का जो भाव है ना वो कहाँ रहता है पता है आपको, सर में रहता है, कहाँ रहता है, सर में। इसलिए हम ना सर किसी के सामने सरलता से नहीं झुकाते, हम झुकाते क्या नहीं, सब कुछ झुका देंगे लेकिन सर को नहीं झुकाएंगे हम किसके सामने। तो उन्होंने बलि ने कहा हे भगवान ये जो अहम की भावना है ना ये मेरे इधर है माथे पर है, तो आपका एक तीसरा चरण है ना तो कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, सर पर रखी है, माथे में रखी है। ऐसे बल्कि ये दो पग डालने के बाद वर्णन आता है कि बलि महाराज का ये दोनों चीजें ली तो बलि की सेना सब लोग ऐसे लड़ाई के लिए तैयार हो गए और रत्नमाला दुखी हो गया, सब लोग दुखी हो रहे थे और बलि को गरुड़ जी बांध देते हैं वरुण पाश में रस्सी से, घसीट घसीट के लाया जाता है। जो अभी अभी त्रिभुवन का राजा था एक क्षण पहले, जिसके प्रति इतनी बड़ी भावना थी उनके घर वाले रिश्तेदार सबकी, लेकिन उन्हीं के सामने व्यक्ति को अपने लोगों के सामने घसीट के लाए तो कितना अपमानजनक है, अच्छा लगता है हा? कितना मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना अपमान हो रहा था, इतना अपमानित हो रहे थे बलि महाराज, जिनको वरण पास से बांधा गया घसीट घसीट के लाया जा रहा था, देवतागण आसुरगण परिवारजन रिश्तेदार सब देख रहे थे, और लेकिन बलि महाराज के हृदय में थोड़ा भी दुख नहीं था। क्या नहीं था? थोड़ा भी दुख नहीं था, क्योंकि उनके पास अहम की भावना नहीं थी। इसलिए अगला लेसन है कि भगवान के भक्तिमय जीवन में पूर्ण समर्पण चाहिए, और पूर्ण समर्पण जो मिथ्या अहंकार है उसको भी हमें भगवान की चरणों में क्या करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। इस संसार की जो बाकी चीजें सदैव हमें पीड़ित करती रहेगी, दुख देती रहेगी। हाँ, आज आपके लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वही लोग आपको क्या करेंगे, गालियां देंगे। आज आप पर फूल बरसा रहे हैं, वह लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर पत्थर मारेंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सबसे सेफेस्ट स्थान है भगवान के चरण। भगवान के चरणों में उन्होंने अहम भाव को त्याग करके समर्पित हो गए और वो दुखी नहीं हुए, उनको कुछ लगा नहीं, वो आनंदित थे, हृदय में आनंद हो रहा था कि भगवान ने मुझे चुना। क्या करते हैं भगवान ने, अभी कोई सोचो कुछ व्यास पूजा हो रही है, फेस्टिवल हो रहा है और आपके हाथ में चावल, मुझे चुना, देखो सारे लोग किसको देख रहे हैं, मैं स्टेज में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, चावल कर रहा हूं, अब तब हम सोचते हैं। और दुख आता है तो भगवान को नहीं बोलते कि भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे चुना इस दुख में। यहाँ प्रहलाद बलि कह रहे हैं कि भगवान ने तो कितनी कृपा, इतने जगत के लोगों में उन्होंने किसको चुना, मुझे चुना, क्योंकि प्रिय भगवान मुझे बनाना चाहते हैं। ऐसी भावना होनी चाहिए हर चीज में। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में दशम स्कंध में कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे कष्टों को झेलते हुए भगवत भक्ति को दृढ़ता से करता रहता है, विचलित नहीं होता हर स्थिति में दुख की, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति भगवान की जो कृपा है या भगवान का जो प्रेम है उसका उसको प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, योग्य नहीं, क्या बन जाता है, अधिकार, उसका अधिकार बन जाता है, भगवान उसको प्रदान करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ इतना अच्छा मनोभाव था, ये लीला बहुत अद्भुत है। हाँ, इसको यदि हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो बलि महाराज समर्पित हो जाते हैं उनके चरणों में, और फिर भगवान अपना तीसरा पग उठाते हैं और कहाँ रखते हैं, बलि के सर पर। हम छोटे थे, स्कूल में ड्रामास होते थे तो सबको एक ही ड्रामा करना अच्छा लगता था, ये बलि और वामन, क्योंकि याद करना बड़ा इजी है, तीन पग भूमि और तीन पग डालने हैं, एक बच्चे के सर पे लाल आखिरी कदम डालना, एक बच्चा जोर से दबा देता था उसका सर। हम तो ये लीला बचपन से पढ़ते थे, लेकिन भागवत में जब जाते तो देखते ही इसमें तो इतना कुछ है, ये तो ऊपर ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन क्या है, शिक्षाओं से क्या है, भरा हुआ है, एक एक चीज को हम देखे तो अच्छी तरह से कई समय लग सकता है। तो फिर भगवान के प्रति ऐसे शरणागत हो जाते हैं वामन देव, और भगवान कहते हैं कि वामन, फिर भगवान जो राज्य का स्वर्ग का वो देवताओं को देते हैं, देवता लोग को कहते हैं कि आप जाओ अपना राज्य लेके रहो स्वर्ग में, और बलि महाराज, तो बलि महाराज सबको लगा कि बलि महाराज पराजित हो गए और देवतागण क्या हो गए, जीत गए, क्योंकि भगवान देवताओं के वंश में आए हैं ना वामन देव। तो लेकिन शास्त्र कहते, आचार्यगण कहते हैं कि वास्तव में इस पूरी लीला में यदि देखें तो जीत केवल एक व्यक्ति की हुई है, और वो कौन थे, बलि महाराज, वो वास्तव में विजय हुए। क्या विजय था उनका, कि भगवान ने कहा बलि मैं तो गदगद हो गया तुम्हारा ऐसा समर्पण का भाव,
और तुम्हारे हृदय में जो सेवा की मेरे प्रति भावना है। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में स्वर्ग के ये तुच्छ है, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग से भी श्रेष्ठ स्थान बनवा के दे रहा हूँ। सुतल लोक, सुतल लोक में एक स्थान देते हैं बलि को, जिसमें बलि महाराज को कहते हैं आप जाइए अपने परिवार आदि के साथ रहिए, प्रह्लाद महाराज को भी ले जाइए। प्रह्लाद के साथ वो जाते हैं, वहां निवास करते बलि, और भगवान कहते हैं कि हे बलि एक आशीर्वाद तुम्हें देता हूं, तुम आसुरों के बीच में भी रहोगे तो भी तुम्हारा जो मन है कभी दूषित नहीं होगा, असत संत का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा और नित्य रूप से मेरा स्मरण करते रहोगे इस स्वभाव में। और ये दो आशीर्वाद भगवान ने और दो भक्तों को दिए थे, याद है आपको, प्रह्लाद महाराज को भी यही आशीर्वाद दिया था, ध्रुव महाराज को भी भगवान ने यही आशीर्वाद दिया था कि आप ध्रुव को तो इतना ऐश्वर्य में रहना था, उनको इतना ऑपुलेंस धन संपदा पद मान सम्मान, भगवान ने कहा वो आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप मुझे कभी भी भूल नहीं पाओगे। और प्रह्लाद तो आसुरों के बीच में, प्रह्लाद को भी वही बोला था कि आपका सदैव आपको मेरा स्मरण रहेगा, बलि को भी वही आशीर्वाद। तो इसलिए अगली शिक्षा है कि सबसे बड़ी बड़ा आशीर्वाद या सबसे बड़ी प्रार्थना हमें कुछ करनी चाहिए तो यही कि भगवान मैं आपको कभी भूलू ना, आपका हमेशा मुझे स्मरण रहे। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे Always remember Krishna, never forget Krishna। जितने भी नियम आप पालन करते हैं वो उन नियमों का ये राजा है कि कृष्ण का हमेशा स्मरण करना, कृष्ण को कभी नहीं भूलना। ये हो रहा है तो समझना कि सारे नियम पालन हो रहे हैं, और ये नहीं हो रहा है तो समझना कुछ नियम पालन में क्या है, गड़बड़ी है, प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ भूल है। हाँ, तो नियमों को पालन करते हैं इसका मतलब आपका स्मरण बढ़ना चाहिए कृष्ण का। हाँ, वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलतियां हैं। हाँ, तो फिर दूसरी चीज भगवान ने कहे कि मेरा ये सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। और तीसरी चीज भगवान ने कहे कि हे बलि तुम जब सुतल लोक में रहोगे अपने महल में, उसके दरवाजे में मैं चौकीदार बन के खड़ा रहूंगा। सोचो कितनी बड़ी विजय, मतलब हर रोज भगवान को देख रहे हैं सुतल लोक में, उनके महल के सामने भगवान वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति नारायण वहां सिक्योरिटी गार्ड के समान दंडा अपने हाथ में लेकर बलि महाराज के दरवाजे में खड़े हैं। इतना बड़ा गुण, तो ऐसे भगवान वास्तव में इससे देखते हैं कि उनकी विजय हुई है। तो जब भगवान उधर ही गए, ये लीला होकर चले गए भगवान वहां नीचे उनकी सेवा में, तो यह वैकुंठ में लक्ष्मी देवी सोचते हैं अच्छा मेरे पति गए थे लीला करने, क्या हो गया अभी तक वापस नहीं आए, लंबा समय बीता, उस समय तो मोबाइल नहीं था, उनको क्या मोबाइल की आवश्यकता है, हम इसे बोल रहा हूँ। तो लक्ष्मी देवी के लिए अभी जाकर आती हूँ, लक्ष्मी देवी आती है नीचे, अच्छा मेरे पति तो सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार बने हुए हैं, कोई बनना चाहेगा चौकीदार आप में से, कोई नहीं, यहाँ भगवान भक्त के दरवाजे में चौकीदार, हमें कुछ ऐसे ऐसे निम्न सेवा आती है तो वैसे पसीने छूटते हैं, मेरे मुझे ऐसी सेवा क्यों, हर सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। तो वहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े रहे, लक्ष्मी ने देखा अच्छा मेरे पति यहाँ खड़े हैं, इतना यही था और एक प्रॉब्लम था, ये जब लक्ष्मी देवी आए तो बलि महाराज ने उनकी ये की पूजा अर्चना की, और बलि महाराज को लक्ष्मी कहती है कि निवेदन करना चाहती हूँ बलि। अभी देखो लक्ष्मी देवी वो निवेदन, वो ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट में पता है अंतर, घर में पता रहता है ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तो वैसे ही लक्ष्मी देवी ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया रिक्वेस्ट निवेदन, हे बलि महाराज एक निवेदन है, मुझे ना मेरे पति का दुख नहीं देखा जाता, हाँ पतिव्रता स्त्री को अपने पति का दुख नहीं देखा जाता। तो उन्होंने कहा इतना दुख, क्या दुख था कि ये बलि महाराज के महल को बहुत सारे दरवाजे थे और वो बलि महाराज कौन से भी दरवाजे से बाहर निकल सकते थे, तो भगवान दौड़ते रहते थे पूरे दिन, अच्छा इस दरवाजे से आ सकते, दौड़ता उस दरवाजे में, अच्छा यहाँ से वहां से आ सकते, पूरे दिन भगवान पसीने पसीने, दौड़ते रहते थे। अरे किसने देखा? लक्ष्मी ने। उन्होंने कहा ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, मेरा पति पूरे दिन पसीने पसीने से लथपथ रहता है। बलि को कहते, बलि बस एक निवेदन है कि एक ही गेट से बाहर आया करो, जिससे क्या होगा मेरे पति को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तब से बलि महाराज एक ही गेट से बाहर आते थे। आज तक सूतल लोक में बलि महाराज की सेवा में भगवान है। अब सोचो कितना बड़ा स्थान है। इसलिए भगवान कहते हैं मत पूजा भ्यादि कहा, मेरे पूजा से श्रेष्ठ मेरे भक्तों का पूजन है, जो स्वयं भगवान लगे हैं उनकी सेवा में। और भगवान ने कहा था कि अगला जो इंद्र बनेगा, इंद्र तो एक पोस्ट है, तो अगला इंद्र बलि तुम बनोगे, हाँ तुम्हारे लिए वो स्थान रिजर्व है। तो सोचो आत्मनिवेदन, हाँ जो नवदा भक्ति है श्रवणम से शुरू होती है, उसके अलग अलग आचार्य। श्रवणम के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य शुक्रदेव गोस्वामी। तो जो आत्मनिवेदन है नवदा भक्ति का आखिरी अंग, उसके आचार्य बलि महाराज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस लीला से जो संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया कि बलि महाराज भगवान को समर्पित होने के लिए अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रहे थे और वो डरे रहे थे। हमें लगता है कि हम एक एक स्टेप भक्ति में उठाते डर डर, तिलक लगाओ कि नहीं लगाओ, दस लोग क्या कहेंगे, बाहर निकलो कि नहीं निकलो, माला गले में लटका के जाओ कि नहीं जाओ, कितना भय है। और यहाँ बलि महाराज तो कोई नहीं भय, वो तो पूरी तरह से सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित किया, कोई क्षोभ या दुख की भावना नहीं रखी। अत्यधिक आनंद हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कृष्ण की सेवा से बढ़कर क्या है इस संसार में। इस संसार में है सांसारिक जीवों की सेवा कितने भी करो तो वो याद नहीं रहेगा, अब उसको याद नहीं रहेगा, वो कृतज्ञ नहीं होगा, वो बाद में चिल्लाएगा तुमने हमारे लिए किया ही क्या। हर माँ बाप को सुनना पड़ता है जब बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े होकर क्या गया तुमने हमारे लिए, हाँ चिल्लाते हैं डांटते हैं। माता पिता बेचारे बूढ़े हैं, उनको सोचते घर से बाहर ना निकल दे, सुनना पड़ता है। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। लेकिन कृष्णा छोटा भी कुछ करो, वो जो कुब्जा है वो उसके लिए चंदन लेके जा रहे थे, इसके लिए। लेकिन बीच में कृष्णा आ गए, उसने एक क्षण नहीं सोचा। हाँ तो हम सब कुछ अपने देश के लिए परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, हाँ लेकिन वो सब हम रात करें सोचें कि आप कृष्ण की सेवा करते हो अभी से, तो कुब्जा के समान कृष्ण कृपा करेंगे। जो चीज हम परिवार के लिए देश के लिए सबके लिए योजना बना रहे हैं आयोजन कर रहे हैं, तो हम यदि कृष्ण की थोड़ी सेवा करते उससे जैसे थोड़ा सा चंदन लगाया, वहां कृष्ण ने असीम कृपा की। तो उसी प्रकार से है अपना जीवन धन्य सुगंधित हो सकता है जब हम बलि महाराज का तो बहुत बड़ा मनोबल था मनोभाव था, लेकिन थोड़ी भी हम शिक्षा लेते हैं तो हम अपना जो जीवन है मनुष्य जीवन वो सफल कर सकते हैं, वो धन्य हो सकते हैं। तो ये अच्छा मौका श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो ऐसे अलग अलग भगवान की जो लीलाएं हैं, भक्तों का चरित्र है, उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे भक्तिमय जीवन में हमें पोषण मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, और भगवान में हमारा अनुराग मन हमेशा डूबेगा उसमें, जाएगा उस चीज के प्रति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, वामदेव भगवान की, बलि महाराज की। तो समय बहुत हो गया।